रखते ही नहीं थी।
वो जर्सी गाय होगी वो पलट के तो देखेगी, लेकिन भगे से आप वहाँ से रोड से खिलेगी नहीं। और देसी गाय होंगे जैसा हॉर्न बजाओगे तुरंत वो आपको रास्ता दे देगी। तो जो भैंस का दूध पीते ना उसमें फैट ज्यादा होता है, बड़ा मोटापा तो बढ़ता है किंतु बुद्धि कमजोर होती है। जितने मिलिट्री मैन होते ना मिलिट्री वगैरह में हमेशा गाय का दूध ही दिया जाता है। इसलिए यदि सब बच्चे मन बना ले कि हम गाय का दूध ही पियेंगे तो इससे बड़ा फायदा होगा। तो घर में एक गाय रख लो बढ़िया, गाय के दूध में स्वर्ण तत्व होता है। और आप यूट्यूब वगैरह में देखना गाय के दूध के कितने फायदे, जिन बच्चों को नींद नहीं आती है, चिड़चिड़ापन होता है, गुस्सा, उनके लिए एक बहुत अच्छी दवाई बता रहे हैं। जो भैया बहन खूब लड़ते हैं आपस में एक दूसरे को सुख है, शाम को सोने के मेरे एक आध दो लाभ तो मारे भाई बहन भी खूब लड़ते, बहने बहने भी खूब लड़ती है, और चिड़चिड़ापन बहुत आता, गुस्सापन आता है। तो सबसे गाय का घी होता है बढ़िया, सोते समय एक बूंद इस नाक में और एक बूंद इस नाक में, सोने के पहले गाय का एक एक बूंद घी अपने नाक में डालना प्रारंभ कर दो, 3 महीने बाद रिजल्ट बताना। जिसको नींद नहीं आती अच्छी नींद आने लगेगी। एक भैया यहीं की बात है, जब पिछले बार हम आए थे तो किसी भैया को नींद नहीं आती थी, तो हमने हमसे पूछा तो हमने बताया कि एक बूंद गाय का घी अपने नाक में डालना। और बताते हैं वो जब हम यहाँ लौट के आए तो भैया ने बताया कि मुझे अब तो बहुत अच्छी नींद आने लगी जब से मैं गाय का घी अपने नाक में डालने लगा। तो ये कोई कठिन काम है क्या? यूट्यूब में आप देखना गाय के घी के फायदे, सैकड़ों फायदे उसमें, कुछ नहीं करना, सिर्फ एक बूंद गाय का घी, समझ गए? यदि आपको नहीं मिले तो आप पता करना शुद्ध देसी गाय, जर्सी गाय का नहीं, वो और खराब हो जाएगा। भैंस का भी घी नहीं, देसी गाय जानते हैं आप, बढ़िया जो चरती है बहुत अच्छी सुंदर होती है। जर्सी गाय तो कोई है वो घर से बाहर ही निकलती। देसी गाय का घी एक एक बूंद आप नाक में डालना शुरू कर दे, 3 महीने लगातार डालो, और उसके बाद अगर आप डालेंगे तो घाटा इससे कुछ नहीं है। पागलपन, मिर्गी, ऐसे बड़े बड़े रोग इससे दूर होते हैं। उसमें जब हमने सुना तो गाय के दूध घी जैसा कोई दूसरी औषधि नहीं है। यदि आपको चेहरे में किसी प्रकार के विकल्प होते हैं गाय का घी इतना सा चुपड़ लो, सुबह तो दूसरी दवाई बताए थे। अब ये भी है गाय का घी लगाने से बहुत से स्किन प्रॉब्लम दूर हो जाती है। हाँ, इसलिए गाय की बात आपको बता दी। जो वो साधु महाराज जो वहाँ पर पहुँचे तो सबने अतिथि देवो भव, अतिथि हमारे देवता के समान निवेदन किया, लेकिन साधु जी ने कहा कि मैं उसी के यहाँ पर भोजन करूँगा जो मुझसे मेरी 3 बातें खरीदेगा। कितनी बातें खरीदेगा? ओके, 1 बात की कीमत है 1,00,000 रुपए। कितनी कीमत 1 बात की? तो 3 बात की कीमत कितनी होगी? अच्छा बेटा देखो हमारे सर, 1 हाथ से 1 महाराज जी देखते, 2 हाथ से कितने देखेंगे? 1 हाथ से 1 किलोमीटर देखता तो 2 हाथ से 1 किलोमीटर। हम बताओ 1 लाख, 1 बात की कीमत 1,00,000 रुपए, तो 3 बात की कितनी कीमत? अलग अलग गणित हो गया। अच्छा वो तो ठीक है, यहाँ 3 लाख, वहाँ 2 हाथ से भी 1 महाराज देखेंगे और 1 हाथ से भी, लेकिन वहाँ ऐसा नहीं लगाना। 3 लाख की हमने मना कर दिया कि हम आपको भोजन तो करा सकते हैं किंतु आपको 1,00,000 रुपए देने को कोई तैयार नहीं था। बातें ही सुन लेंगे लेकिन हम पैसे देने को तैयार नहीं। होने का आप पड़ोस में देखिए, और साधु जी घूमते घूमते 3 दिन हो गए लेकिन उनको भोजन नहीं मिला। खबर उड़ते उड़ते राजा के कान में पहुंची कि हमारे नगर में साधु जी आए हैं किंतु 3 दिन से उनका भोजन नहीं हुआ। राजा बड़ा धर्मात्मा था, उसने साधु को अपने राजमहल में बुलाया और निवेदन किया कि साधु जी आप हमारे नगर में आए, जिस नगर गांव में साधु पधारे और भूखा चला जाए तो इससे बड़े दुख की क्या बात है, आप भोजन जरूर करिएगा। तो साधु ने वो ही बात कह दी। कौन सी बात? 3 बातें आप मेरी खरीदोगे तो मैं आपके यहाँ। तो राजा ने कहा आप जैसा कहेंगे वैसा होगा, लेकिन आप हमारे यहाँ पर भोजन जरूर करिएगा। तो साधु जी भूखे तो थे 3 दिन से, और बढ़िया साधु जी ने भरपेट भोजन कर लिया। उसके बाद राजा हाथ जोड़ करके बैठ गया साधु जी से। हे बेटा क्या हो गया, किसने निवेदन किया, किसने निवेदन किया? राजा ने निवेदन किया साधु जी से कि अब आप हमें वो तीन बातें बताइए जो आप 3 लाख रुपए में देने वाले थे। तो साधु जी ने उसको 3 बातें बता दी। कौन कौन सी बता रहे आपको? फ्री में 3 लाख रुपए। तो 3 लाख रुपए तो हमें कह दो महाराज आप जाओ कमरे में हम सबसे। चलो हम पकड़ में बता देते हैं। पहली बात साधु जी ने बताई थी, प्रतिदिन जल्दी सुबह उठ करके घूमने जाना। क्या कहा? प्रतिदिन जल्दी उठ करके फिर सो जाना है। कई लोग उसको बहुत जल्दी जाते हैं किंतु फिर सो जाते हैं। मम्मी इधर उठा के जब तक पहुंचे में गई तब तक अपन होता नहीं होता कई बार। इधर किसी ने उठा के दिया जब तक वो घूमने गए तब तक अपन फिर सो गए। नहीं, सुबह उठ करके घूमने जाना। 100 रोगों की एक दवा सुबह सुबह की हवा। सुबह सुबह की जो हवा चलती है ना सैकड़ों रोगों को दूर करती है। किसी ने मोदी जी से पूछा, प्रधानमंत्री जी मोदी जी से, कि अंकल आप दिन में कितने घंटे सोते हैं, आप दिन में कितने घंटे सोते हैं? तो वो मुस्कुराए, बोले बेटा पहली बात तो मैं दिन में कभी सोता नहीं, दिन में जो भी सोता है उल्लू बन जाता है। सुन रहे, दिन में कभी नहीं सोना चाहिए। दिन में सोने से आयु कर्म की उधेड़ना होती है। बहुत बीमार हो, विशेष परिस्थिति हो तो 15 या भोजन करके ज्यादा भोजन हो गया हो तो 10-5 मिनट बाएं करवट लेट जाओ, लेकिन घंटों नहीं सोना। जो दिन में सोते हैं सुन लो, उनकी भी बुद्धि खराब होती है, बुद्धि कमजोर होती है। लोग रात भर पड़ेंगे और दिन भर सोएंगे घोड़े बेच करके, ये भी गलत है। सोने का समय कब है? दिन में की रात में? रात में सोना चाहिए, दिन में नहीं सोना चाहिए। और वहां पर जो उन्होंने कहा सुबह जल्दी उठ करके क्या करना, घूमने जाना, क्योंकि सुबह सुबह की हवा 100 रोगों की एक दवा। और एक दवा आपको बता दें, ठाकुर जी ने एक बार हम लोगों को बताया था, पैर नरम पेट गरम सिर हो ठंडा। पेट नरम पैर गरम सिर हो ठंडा और बैठ भी आए तो दिखाओ डंडा। पेट कैसा होना चाहिए? नरम। पैर कैसे होना चाहिए? गरम। और सिर कैसा होना चाहिए? वो होता क्या हमारा सिर तो हमेशा गरम रहता, पेट कड़ा रहता। पेट कड़ा क्यों होता है पता है? जब अच्छी तरीके से भोजन नहीं पचता, इसीलिए जो जितने दिन भर खाते रहते ना उनका पेट हमेशा कड़ा बना रहता है, भूख भी नहीं लगती। इसलिए एक और मन बनाओ, आपको यदि स्वस्थ रहना हो तो एक बार आपने कुछ खा लिया ना उसके बाद 3 घंटे तक हम कुछ भी खाएंगे पिएंगे नहीं। 3 घंटे का त्याग कर दो। जैसे 12 बजे आपने भोजन किया, अब हम 3 बजे तक कुछ भी खाएंगे पिएंगे नहीं। अथवा सुनो, बढ़िया अष्टमी चतुर्दशी उपवास करो। पेट नरम पैर गरम कैसे रहेंगे? पैर गरम रखने का आधार ये है कि आप पैदल चलना प्रारंभ करें। दिन में कम से कम कितने पैदल चलना चाहिए? कम से कम 4 किलोमीटर प्रतिदिन पैदल चलना चाहिए। उस समय उन्होंने पूछा था, आपको कभी पसीना आता क्या? पसीना आना चाहिए। कम से कम 4 किलोमीटर पैदल चलना चाहिए तो आप बीमार नहीं होंगे। और तीसरी बात, सिर हो ठंडा। सिर ठंडा करने का एक सूत्र आपको बताते हैं, ये जल्दी से आप बच्चों। सिर ठंडा करने का बहुत अच्छा उपाय सूत्र आपको देते हैं, सुन रहे सुन लो। जो हुआ अच्छा हुआ, जो होगा अच्छा होगा, डोंट माइंड इट। क्या सूत्र दिया आपको? जो हुआ अच्छा हुआ, जो होगा अच्छा होगा, डोंट माइंड। मुझे ज्यादा विचार नहीं। कुछ लोग क्या इतना सोचते हैं कि सोचते सोचते उनका माथा गर्म हो जाता है, लेकिन वास्तव में हमारे बुजुर्गों ने, हमारे गुरुओं ने ये सिर को ठंडा रखने का बहुत अच्छा उपाय बताया है कि हम करें तो बहुत अच्छा, लेकिन फिर भी जो हो गया उस पर बार बार विचार ना करें, अपने भविष्य को अच्छा बनाने का मन बनाएं। सुन रहे आप लोग, एक कथा आप सबने स्कूल में पढ़ी होगी। एक राजा और उसका मंत्री जो है घूमने के लिए निकले और अचानक राजा का घोड़ा बिचर गया। और राजा का घोड़ा जैसे बिचर गया, आप ही चलते हैं जल्दी से लड़ा। हाँ ठीक है, हाँ हाँ हाँ, दो कहानी हम पूर्ण करते हैं कहानी। हाँ क्या, और एक राजा और जब मंत्री निकले, अब वही रख लो बेटा, इस तरह है ना, इससे डाल देना, इकट्ठी कर लो, नहीं तो गुस्सा हो जाएगा। बहुत सारे प्रश्न हैं, इसको समाधान करने में टाइम लग जाएगा, यहीं पे इकट्ठी कर लो, एक साथ आ जाएगी रख दे। हाँ सुनो जल्दी से, जब राजा का घोड़ा बिचक गया तो राजा की उंगली टूट गई और उसमें से खून निकलने लगा। सुना ना आपने कहानी, सुनी। जब उंगली कट गई तो राजा बड़ा दुखी हुआ, तो मंत्री ने कहा कोई बात नहीं राजे, जो हुआ तो अच्छा हुआ। राजा को बड़ी गुस्सा आई, एक तो मेरी उंगली कट गई और क्या क्या था, जो हुआ तो। राजा का भाग जाओ, ऐसे मंत्री की तुझे कोई आवश्यकता नहीं है। और इधर राजा को बहुत जोर की प्यास लगी, जब राजा को प्यास लगी राजा आगे गया। देखो हाँ ये बच्चों, अब कोई चिट्ठी मत देना, बहुत सारी है, अब चिट्ठी देना तो कल और आना पड़ेगा। तो क्या हुआ, उन्होंने कहा बड़ी गुस्सा है, इसको मुझे बड़ा चोट लगी और कहता जो हुआ तो अच्छा हुआ। राजा को प्यास लगी, आगे बढ़ा, अगर भील कबीले के लोग थे, उसने राजा को पकड़ लिया और पकड़ करके ऐसे स्थान पर ले गए जहाँ पर बलि दी जा रही थी। और जैसे राजा को नहरा दुला के बलि की वेदी पर ले गए तो पता चला राजा की उंगली कटी थी। तो उन्होंने कहा जिसकी उंगली कटी उसकी बलि तो नहीं दी साल रहती, इसको छोड़ दो। तब राजा को लगा कि अरे राजा, मेरे मंत्री ने कहा था जो हुआ तो अच्छा हुआ, वास्तव में मैंने उसको बेकार ही निकाल दिया, इसकी वजह से मेरा जीवन बचा। जब वो वापस राजमहल में पहुंचा, उसने मंत्री को वापस बुलाया कि मंत्री आप आ जाओ, मेरी गलती थी जो मैंने आपको समय निकाल दिया। तो मंत्री जी कहने लगे इसमें कौन सी गलती राजन, जो हुआ तो। जब आप मैं आपके नौकरी गए तब भी मुझे विकल्प नहीं था और आपने मुझे निकाल दिया तो भी मुझे कोई विकल्प क्यों, क्योंकि मुझे तो पता है जो हुआ तो, और जो होगा तो। अरे बोले मैंने तुम्हें निकाल दिया, अच्छा हो, बोले बहुत अच्छा हो। बोले कैसे, बोले यदि आप मुझ पर गुस्सा नहीं करते, मुझे नहीं निकालते तो क्या होता, आपको प्यास लगी थी, आपके साथ मुझे भी पानी की खोज में जाना पड़ता और हम दोनों को पकड़ लेते, आपकी उंगली कटी थी आप तो बच जाते, किंतु मेरी उंगली सारी थी, मेरी जो बली चल जाती, इसलिए आपने मुझे निकाल दिया तो क्या हुआ, अच्छा हुआ। ये सूत्र अगर हम अपने जीवन में अपनाएंगे तो निश्चित फिर भी हमारा ठंडा रहेगा। चलिए तो क्या हुआ, पहली बात क्या करेंगे, प्रतिदिन सुबह जल्दी उठ करके घूमने जाना। और दूसरी बात क्या गई थी, ये बहुत सारे प्रश्न हो गए बेटा, आप रख लो, दीदी को दे देना पड़ती तो ले लो अभी। हाँ तो तीसरा प्रश्न सोचा, सुबह जल्दी उठ करके घूमने जाना। और दूसरी बात उन्होंने क्या, सिर हो ठंडा। तो तीनों बातें आपको बता दी, प्रतिदिन 4 किलोमीटर घूमो, अष्टमी चतुर्दशी को उपवास करो या 3 घंटे तक कुछ भी मत खाओ, तो पेट नरम रहेगा। और सिर ठंडा रखने का उपाय क्या बताया, जो हुआ तो, जो होगा तो, फेल होगा तो। अच्छी मेहनत नहीं करो तो फेल हो गया, अच्छे पढ़ेंगे लिखेंगे फिर भी कई बार ऐसा होता, हमने बहुत मेहनत की थी 98% आना चाहिए किंतु 95% आ गए या 70% आ गए, ना तो रोने लगते हैं, फांसी लगा लेते हो, रेल की पटरी के नीचे जाते भी बच्चे हो सड़ जाते हैं। ऐसा नहीं करना, खूब अच्छी मेहनत के लिए फिर भी अगर सफलता नहीं मिलती, ये सोचना जो हुआ तो बहुत। ये अब्दुल कलाम, एपीजे अब्दुल कलाम का आपने जीवन परिचय पढ़ा था, अग्नि की उड़ान करके पुस्तक, उन्होंने लिखा है कि जब मेरा इंटरव्यू देने के लिए, वो उनको वायु सेना में भर्ती होना था, और जब वो इंटरव्यू देने गए तो वहाँ पर जो है उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया। वो बहुत दुखी थे कि मेरी भावना थी मैं वायु सेना में अफसर बनूंगा, नहीं बन पाया। किंतु जब उनका अगला इंटरव्यू वैज्ञानिक की पोस्ट के लिए था, और जब वो रास्ते में हरिद्वार पड़ता था, हरिद्वार में किसी संत के पास पहुंचे, उन्होंने कहा देखो तुम आकुलता मत करो, दुखी मत हो, नियति को कुछ और मंजूर है, इसलिए तुम विकल्प न करो, प्रसन्नता से अपने आगे परीक्षा की तैयारी करो। और उन्होंने बताते एपीजे अब्दुल कलाम जो राष्ट्रपति जी थे, उन्होंने अपनी तैयारी की तो उनका सिलेक्शन जो है जूनियर वैज्ञानिक की पोस्ट के लिए उनका सिलेक्शन हो गया। और जब वो वैज्ञानिक को उनका मन तो नहीं था, किंतु क्या करने चले, जो हुआ तो अच्छा हुआ, मान के वो अपने काम में जुट गए। और उन्होंने मिसाइल, अच्छी अच्छी मिसाइलें तैयार की, फिर देश के इतने प्रिय नागरिक बने कि उनको बिना किसी इलेक्शन के राष्ट्रपति पद का उनको अधिकारी चुना गया। और उन्होंने स्वयं लिखा कि यदि मैं उस समय आकुलित होता और अपना भविष्य यदि मुझे सूत्र नहीं मिलता, तो आज मैं जिस राष्ट्रपति पद पर पहुंचा, वहां ना पहुंच करके हवाई जहाज को उड़ाता होगा, किंतु मैं किसी अच्छी मिसाइल का निर्माण नहीं कर पाता, ना राष्ट्रपति बन जाता। इसलिए सिर ठंडा रखने के लिए क्या करना, जो हुआ इसका गलत काम नहीं करना, अच्छे से अच्छा करना। और आप अच्छे से अच्छा भविष्य बनाने के बाद भी क्वचित कदा के तीव्र करने को जैसे असफलता आए, तो विकल्प ना करके रेल की पटरी के नीचे मत जाना, नहीं तो तुम तो रेल की पटरी के नीचे चले जाते हो और मम्मी पापा सारी जिंदगी तुम्हारे दुख में रोते रहते हैं। इसीलिए सिर को ठंडा रखना। तो वहाँ पर पहला सूत्र मैंने कहा था, प्रतिदिन सुबह जल्दी उठ करके, सुबह कितने बजे होती भैया ये तो बताओ, कुछ लोग 10 बजे सोते होते, सभी मुझे सुबह होते, सुबह 5 या 6 बजे किसी भी हालत में जाना चाहिए, जो रात को जल्दी सोए और सुबह को जल्दी जागे, उस बच्चे की किस्मत का सुख दूर दूर तक भागे। ये गीत था। तो रात में 10 या 11 बजे सो ही जाना चाहिए, जो बच्चे स्टूडेंट लाइफ में रात में 12-12, 2-2 बजे तक जगते हैं, ये उचित नहीं है। आप 10 या 11 बजे सो जाओ और सुबह 4-5 बजे उसके अध्ययन करेंगे तो आपको बहुत जल्दी याद होगा। हम जब 11 में पढ़ते थे और ऐसे कुछ बदमाशों की संगति में पढ़ गए थे कि रात भर तो पढ़ना और दिन भर सोना। अब रात भर पढ़ते थे, जो बार पढ़ना क्या, गप्पे ज्यादा करना और पढ़ाई कम करना, वो 3 बार चाय पीने चले गए, फिर सिगारा खाने लगे, फिर मूंगफली खाने हो रहे, तो रात के 8-12 घंटे में 4 घंटे मुश्किल से पढ़ते थे। लेकिन जब परीक्षा देने गए, मैथ का पेपर था और ऐसा चक्कर आया उस समय ट्रिग्नोमेट्री सब भूल गए, उसी दिन अपने संकल्प ले लिया हम रात में कभी भी नहीं जगेंगे, जब नींद आएगी तब सो जाएंगे और पढ़ने में दिन में अच्छी पढ़ाई करेंगे तो अच्छे नंबर आते हैं। इसलिए दूसरी बात उन्होंने कही थी, शत्रु भी अतिथि बन के आए तो उसका सम्मान करना। क्या कही थी, शत्रु भी अतिथि बन के आए तो उसका सम्मान करना। और तीसरी बात उन्होंने बताई, कितनी भी विपरीत परिस्थिति हो जल्दबाजी नहीं करना। तो तीनों बात जब राजा ने सुनी तो राजा ने 3 लाख रुपए साधु को देने लगा कि मैंने आपकी तीनों बातें स्वीकार करता हूँ, ये 3 लाख रुपए रखो। साधु मुस्कुराए, कहने लगा बेटा मुझे अगर पैसा ही चाहिए तो मैं साधु क्यों बनता, मुझे जिस बात की परीक्षा करनी थी कि किसके मन में साधु के वचनों के प्रति श्रद्धा है, मुझे पैसा नहीं चाहिए, पैसा तो तुम ही रखो। सुने क्या कहा, किसने कहा, किसने कहा, फिर मैं क्या करूंगा, राज साधु ने कहा तुम इन वचनों का पालन करना, जो 3 बातें मैंने आपको बताई उसका जीवन में आचरण में लाना, और मेरा तो पेड़ भर गया और अब तो मैं यहाँ से चलता हूँ। साधु वहां से चला गया, राजा ने नियम ले लिया, मैं आपकी बातों का अच्छे से पालन करूंगा। और वो राजा जो है प्रतिदिन घूमने के लिए जाने लगा। एक दिन जब 3-4 दिन व्यतीत हुए और जब वो 3-4 महीने व्यतीत हो गए, अब राजा जब सुबह सुबह घूमने जाता था तो हल्का सा अंधेरा रहता था और अंधेरे में उसे एक परछाई महिला की आकृति दिखाई दी, वो जोर जोर से रो रही थी। तो साधु राजा ने पूछा तुम कौन हो, क्यों रो रही हो, उसने कहा मैं भवितव्यता हूँ, अतः भविष्य में होने वाली घटना का प्रतीक हूँ, फिर तुम क्यों रो रही हो। तो उसने कहा कि यहाँ का राजा जो है ना बहुत धर्मात्मा है, जवान है, स्वस्थ है, किंतु खेद की बात है कि 3 दिन बाद राजा का मरण हो जाएगा। तो स्वयं था झगड़ा में राजा का मरण हो जाएगा, ऐसे कैसे हो सकता है? क्या बच्चों कोई चिट्ठी नहीं लिखो, हमारी कहानी सुनो पहले जल्दी से, कोई जवाब नहीं लगाएगा, प्रश्न के लिए समय नहीं है, इसलिए आपको कहानी सुना रहे हैं, तो सब दे देंगे। अब उन्होंने कहा कि कैसे मर जाएगा राजा, तो स्वस्थ है, जवान है और धर्मात्मा, कैसे मरेगा? मेरे सामने पहाड़ी से सर्प आएगा और राजा को डस लेगा और राजा के प्राण निकल जाएंगे। बोले बचने का कोई उपाय? बोले उस समय यदि कोई अपने प्राण त्यागने को तैयार हुआ तो राजा बच सकता है। इतनी चर्चा करी और राजा कुछ पूछ करके उजाला हो गया, वो परछाई गायब हो गई। राजा ने आगे की यात्रा विराम ले ली और राजा वापस लौट करके अपने महल की ओर आया। अब क्या करूं? उसको साधु की दूसरी बात ध्यान आई। क्या जान? दूसरी बात क्या थी? शत्रु ही अतिथि बन के आए तो उसका सम्मान करना, ये सर्प आ रहा है मेरा शत्रु है, फिर भी गुरु जी ने कहा इसका सम्मान करना, तो मैं क्या कर सकता हूँ? तो पहाड़ी से लेकर के राजमहल के रास्ते में पूरी उसने आदेश दे दिया, झाड़ू लगाई जाए, साफ सुथरा तो रास्ता करा जाए, फूल बिछाए जाए और दूध से भरे हुए कटोरे रास्ते में रख दिए जाए। उसने साधु के सर्प के स्वागत के लिए इतनी तैयारी कर ली। अब सोचा मैं क्या करूँ, तो चलो मैं चल करके अपनी रानी को ये बात बताता हूँ कि मेरे ऊपर ऐसा संकट आया। और वो अपनी रानी के राजमहल में जाता है, रानी को बात पहुँचता है और रानी को सारी की सारी बातें बता देता है और कहता देखो घबराना नहीं, ये संकट की घड़ी है, मेरा मरण हो जाएगा और लेकिन इसको मेरी शत्रु राजा को पता चल गया तो वो आक्रमण कर सकता है और ऐसी परिस्थिति किसी को कुछ कहा नहीं जा सकता। तो राजा की एकमात्र बेटी थी, वो युवावस्था को प्राप्त हो चुकी थी और राजा ने कहा देखो एक काम करो, जब तक कोई योग राजकुमार ना मिले इसी बेटी को राजा के वस्त्र पहना करके क्या करना, राजगद्दी पर बैठा देना, जब कोई अच्छा राजकुमार मिल जाए तो उस बेटी का विवाह करके उसे राजा बना देना और मैं अपने काम के लिए चाहता हूँ और तुम इस बात का ख्याल रखना। और ये बात जब उसने कह दी और इसके बाद राजा अपने दरबार में चला गया। 3 दिन व्यतीत हुआ, उस सर्प वहाँ पर पहाड़ी से निकला और जैसे पहाड़ी से सर्प निकल करके राजमहल की ओर जा रहा था उसने रास्ते में क्या देखा, इतने साफ सुथरा रास्ता, फूल बिछे हैं और दूध से भरे कटोरे रखे हैं। उसको किसने मेरे रास्ते पर फूल बिछाए, मैं जिस रास्ते पर चलता था वहाँ तो कांटे कंकर पत्थर मिलते थे, आज तो किसी ने मेरे रास्ते पर फूल बिछा दिए। और आगे बढ़ते बढ़ते जैसे राजमहल तक पहुँचा उसको विश्वास हो गया कि ये तो राजा ने ही मेरा इतना सम्मान किया है। और जैसे राजमहल में प्रवेश करने लगा लोग उसको मारने के लिए खड़े हुए, राजा ने मना कर दिया, नहीं हमारे गुरु ने कहा था। क्या कहा था? शत्रु ही अतिथि बन के आए, समय ये हमारा अतिथि है, हमें इसको मारना नहीं, हमें इसका सम्मान करना है, क्योंकि जो व्यक्ति गुरु के वचनों को मानता है उसका कभी भी बुरा नहीं होता। कई बच्चे अभी यहाँ पर ऐसे बैठे हैं, आज भी 2 दिन आप सुन रहे हैं, लेकिन पुराने ऐसे संस्कार हैं कि अभी लोग गलत काम को छोड़ने का मन नहीं बना रहे। कुछ बहुत अच्छे बच्चे पुण्यशाली हैं जिन्होंने गुरु महाराज के और दीदी जी के प्रवचन सुन के मन बनाया कि हम आपसे जो गलती कर रहे हैं वो कभी भी नहीं करेंगे। कुछ ऐसे हैं बच्चे जो अभी भी गलती को सुधारने का मन कैसे सुधार पाएंगे, वो तो चलता है, हम महाराज जी माता जी तो कैसे रहते, लेकिन बंधु ध्यान से आज नहीं सुधरा, जिसके मन में 2 दिनों में अगर परिवर्तन नहीं आया दुनिया की कोई ताकत उनको नहीं सुधार सकती और वो कभी भी सुखी तो रह ही नहीं सकते। क्योंकि 2 दिन जो दीदी जब आए थे उनको कितनी सर्दी थी, मौसम भी सर्दी का था, हम लोग भी यहाँ पर सर्दी में आकर के और 2-3 घंटे जो आपको उपदेश दे रहे हैं, एक बार भोजन करते महाराज आप कितने बार कर रहे हैं, बढ़िया सोए इडली डोसा ग्राउंड वाली भोजन और पानी अलग, चाय नाश्ता अलग और आराम से बैठ के सुनना है कि मेहनत करना है, कुछ नहीं बताओ दीदी आई हम लोग कितना अपना सब साधना छोड़ करके आपके लिए कर रहे हैं, फिर भी वो ऐसे दुर्भाग्यशाली बच्चे होंगे जो इन 2 दिनों में शिविर अटेंड करने के बाद भी, कई बच्चों ने तो सम्मेलन में भाग ही नहीं लिया, इतने पापी वो जीव थे, आप लोग पुण्यात्मा थे यहाँ पर आ गए, लेकिन यहाँ पर आने के बाद भी यदि आपके मन में परिवर्तन नहीं आया और बुराई से बचने का भाव नहीं आया, समझ लेना हमारे नरक का टिकट पक्का हो गया। और जिनको समझ में आ गई उनका नरक का टिकट कैंसिल होकर के स्वर्ग का टिकट पक्का हो गया। मरने के बाद आप कोई नरक नहीं आएंगे, क्योंकि आपने गुरु की बात को माना और गुरु की बात पर विश्वास किया है। उस राजा ने गुरु की बात का विश्वास किया था, तो गुरु ने कहा था नहीं मानना। राजा खड़ा हो गया, हे सर्प राज तुम्हें जो करना है करो। लेकिन राजा सर्प भी भले वो पशु था या जानवर था लेकिन विवेकवान था। उसने कहा राजन आपने मेरा इतना सम्मान किया, मैं तुच्छ प्राणी, जब तक मैं दुनिया में रहूंगा लोग मुझसे डरेगी और पाप ही बढ़ेगा, लेकिन आप दुनिया में जीवित रहोगे तो प्रजा सुखी रहेगी। मेरा जीना कोई इतना आवश्यक नहीं है जितना आपका जीना आवश्यक है। मैं स्वयं मरता हूँ और आप योगो योगो तक जियो, ऐसे आवाज करता हुआ उसका तो पलटी मार के वहाँ पर मर गया और राजा के प्राण बच गए। राजा बहुत खुश हुआ कि थोड़ा दुखी हुआ लेकिन अपने जीवन बच गया, इस बात को खुशी हुई। चलो जाके ये बात सफल किसको सुनाते, रानी को सुनाते हैं। पर जैसे रानी के महल की ओर वो गया, खिड़की से उसने जो दृश्य देखा आंखों में खून उतर आया, म्यान से तलवार निकाल ली। और जैसे रानी के दरवाजे तक वो पहुंचा उसको साधु महाराज की तीसरी बात ध्यान आ गई, कितनी भी बुरी परिस्थिति हो जल्दबाजी नहीं चलना। जो जल्दबाजी में निर्णय ले लेते हैं अपनी जिंदगी का, जो जल्दबाजी में गुरु और माता पिता को दरकिनार कर देते हैं और अपने निर्णय के अनुसार जिंदगी चलाने लगते हैं, उनकी कैसी दुर्दशा होती है सैकड़ों उदाहरण आज हमारे सामने है। और वहां पर वो जैसे राजा को तीसरी बार ध्यान रही जल्दबाजी नहीं करना, उसने वापस म्यान में तलवार रख ली। और जैसे रानी के महपास पहुंचा तो उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। उसने तो खिड़की से देखा था एक पुरुष मेरी रानी के पलक पर बैठा हुआ है और दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ के बैठे हैं। राजा को गुस्सा आई कि मेरी रानी के महल में पुरुष, मेरे से और कौन जा सकता था। लेकिन जैसे जब आगे पहुंचते उसने देखा सामने से वो कोई पर पुरुष नहीं था, वो तो रानी की स्वयं की बेटी राजकुमारी थी, जिसे राजा के पोशाक पहना करके और माँ बेटी रो रही थी कि बेटा तेरे पिता का अवसान हो जाएगा, अब तुझे ही राजपाट संभालना है। तब राजा को समझ में आया साधु ने जो तीन बातें बताई थी ना, वो तीन लाख की नहीं थी, वो तो अनमोल थी। पहली बात को मानने से राजा को अपने मृत्यु का पता चल गया, दूसरी बात को मानने से क्या हुआ, अपनी मृत्यु से बच गया, जीवन दान मिल गया। और तीसरी बात को मानने से अपनी बेटी की हत्या के पाप से वो बच गया। वास्तव में गुरु वचनों का हमारे जीवन में बहुत बड़ा मूल्य है। हम आपको बताते हैं हमारा संस्मरण, हम भी गुरु जी की बात, एक बार हमारी बहुत तबीयत खराब थी, अमरकंटक में चातुर्मास चल रहा था और गुरु जी के पास हम पहुंचे, गुरु जी हमारी तबीयत खराब है आप आशीर्वाद दे दो। तो गुरु जी कहने लगे उपवास किया करो। क्या कहा है मुनि महाराज, उपवास कैसे करेंगे, दूध पानी लेकर के। बोले महाराज उपवास, हमने कहा गुरु जी अलग गजब बात कर रहे हैं आप, हमने कहा वैसे हमसे एक बार भोजन हो नहीं रहा, तबीयत खराब और आप कहते उपवास किया करो, हमसे तो नहीं बनेगा। और हमने ऐसा कह के अपने कमरे में चले गए। लेकिन कमरे में जब गए मुनि महाराज थे, अब सन 2000 की बात है, तो कमरे में सामायिक करने बैठे, हमें लगा देखो अपने गुरु ने हमसे कोई बात कही है और हम उस बात को टाल दें, ये कभी भी ऐसा नहीं होना चाहिए। हम उनके शिष्य हैं, हमने गुरु के प्रति जीवन समर्पण किया है, अब गुरु जैसा कहेंगे वैसा हमें करना चाहिए। लेकिन शरीर तो कहता है कि उपवास कैसे करोगे बेटा, एक आसन में तो नानी याद आ रही, शाम को हाथ पैर ढीले पड़ रहे। फिर हमने मन नहीं माना, हमने कहा गुरु ने कहा है कुछ ना कुछ इसमें रहस्य होना चाहिए। हम आचार्य के पास गए, हमने कहा जैसे हम एक ही भाव के 25 उपवास का जैसा संकल्प लेते हैं कब तक करेंगे ये कोई पक्का नहीं कहते। गुरु जी ने खूब अच्छे से आशीर्वाद दिया, चिंता नहीं करो सब हो जाएगा। और आज 2000 सन की बात है तो ये 2017 हो गए। ये 17 साल में हमने देखा सैकड़ों दवाई खाने के बाद जो हमें स्वास्थ्य का लाभ नहीं हो रहा था, इन 10-15 सालों में कोई दवाई नहीं खा रहे, मन बना दिया कोई दवाई खाने ही नहीं, और गुरु आशीर्वाद से उपवास करना शुरू किया आज हम स्वयं अनुभव कर रहे हैं कि गुरु के वचनों में वो शक्ति होती है, बस हम आस्था से उसको स्वीकारें। ये समझ लेना, महीनों महीनों बीमार रहते थे, आंखों से दिखना बंद हो जाता था, पीला पीला दिखता था और एक एक कटोरी कफ निकलता था और बिहार में ऐसी तकलीफ होती थी। लेकिन जब उपवास करना शुरू किया, भले जिस दिन हम पहले उपवास करते थे दिन भर सोते रहे लेटे रहते थे, शक्ति नहीं होती थी, आंखों से कुछ पढ़ने का मन ही नहीं होता था, लेकिन गुरु वचनों पर श्रद्धा करके आप मरेंगे या जियेंगे लेकिन उपवास तो जरूर करेंगे। और आज हम अनुभव कर रहे हैं कि जो कुछ हम आपके सामने प्रसन्न है बोल पा रहे हैं, ये उपवास की शक्ति है, खाने की शक्ति नहीं। खाने से शक्ति आती है हमारी धारणा है, लेकिन वास्तव में उपवास से कई गुना शक्ति आती है। और ये हमने अनुभव किया था 2002 में, हमारा यहाँ चातुर्मास हुआ था, तब भी जिन लोगों ने हमें देखा होगा और आज 2017 में देख रहे हैं, अंतर आया कि नहीं। शरीर भी स्वस्थ संयम के माध्यम से होता है, इसलिए जितने बच्चे यहाँ पर बैठे हैं अंतिम पारी में है, सीटी गाड़ी छूटने वाली है, कल से आप लोग अपने काम धाम में व्यस्त हो जाएंगे, महाराष्ट्र याद आएंगे नहीं, आएंगे क्या? अभी तो बुला बुला के साथ में आप, फिर भी कुछ बच्चे तो हैं, अभी भी कुछ बच्चे कमरे में आने में डर रहे हैं, हमने सोई कहाँ पर देश कहा दूसरे मत डरना। हाँ, अपनी मर्यादा जरूर बनाए रखना, सुन रहे डरना नहीं, पाप से डरो, देश का गुरु से डरो नहीं, भगवान का भी हमारे लिए दुख के साधन नहीं सुख के साधन है, मर्यादा जरूर बनाए रखो, किंतु देश का गुरु से आप जुड़ेंगे तो आपके जीवन में उत्थान का ही रास्ता आपको मिलेगा, पतन का रास्ता मिलने वाला नहीं है। इसलिए गुरु आज जो कहानी हमने सुनाई, दो दिनों से आपने बहुत कुछ सुना है, अब उसको जीवन में उतारने का वक्त है। सुनना तो सरल है किंतु जीवन में उतारना बहुत कठिन है, लेकिन फिर भी आप अगर गुरु की कृपा आपके साथ है, गुरु का आशीर्वाद है, तो बड़े से बड़े हम दृढ़ संकल्प के साथ अपने जीवन को अच्छा बना सकते हैं। अब ये कुछ प्रश्न आ रहे हैं, मेरा प्रश्न है कि रात्रि भोजन नहीं करते, सहेलियों को बताया कि रात्रि में नहीं दिन में ही भोजन करना चाहिए, तो वह मुझे तर्क देते हैं पहले समय में लाइट की व्यवस्था नहीं रहती थी इसलिए हम रात में खाते, परंतु हम लाइट है। हाँ देखो, ये जो कहते ना पहले समय में लाइट नहीं थी अब लाइट थी, ऐसा इससे कोई संबंध नहीं है। पहले भी रात में कीड़े उत्पन्न होते थे, आज भी रात में कीड़े उत्पन्न होते, आज लाइट के जमाने में रात में ज्यादा कीड़े उत्पन्न होते हैं, समझे आप लोग, रात में देखना कितने कीड़े, अभी देखो आप छोटे छोटे भुंगी वगैरह करोड़ों की संख्या में अब कीड़े होने लगे, पहले रात में इतने कीड़े नहीं थे। अभी सज्जन ने हमें बताया एक शादी में, एक शादी का अरेंजमेंट हुआ, रात में भोजन बनता था और वहाँ पे जब गुलाब जामुन वगैरह बने थे बल्ब के नीचे लग गया, सैकड़ों कीड़े उसमें पड़ गए। अब लेकिन कैसे फेंके, तो उन्हें ऊपर का सब मच्छर कीड़े अलग कर दिए और पूरे गुलाब जामुन आप लोगों को खिला दिया, यहाँ की नहीं बता रहे शादी की बता रहे। इसीलिए रात में ये तर्क होता है। अब बताओ पहले लोग कटिंग कटाते थे कि नहीं कटाते थे? किसी ने सरदार जी से पूछा था, सरदार जी वो तो जमाने की बात है जबकि नाई नहीं होते थे, अब तो नाई होते आप भी बाल कटा लिया करो, ये कोई तर्क नहीं होता। सरदार जी बाल रखते ना लंबे लंबे गिट्टा रखते हैं, इसका ये थोड़ी ना कि उस समय नाई नहीं होते होंगे अब नाई होते, ये सब फालतू की बातें। रात में सैकड़ों कीटाणु उत्पन्न होते, दिन में सूर्य प्रकाश में वो यहाँ वहाँ छुप जाते हैं, लेकिन रात में जैसे आप बल्ब जलाएंगे, अभी आपने देखा था ना नौ दुर्गा आदि के समय कितने काले कीड़े हो रहे हैं, ये दिन में कीड़े उत्पन्न होते क्या? नहीं, स्पष्ट है रात्रि भोजन में अनेक प्रकार के कीड़े उत्पन्न होते, जीव हिंसा होती है, इसलिए उससे अपने को बच लेना चाहिए। और जो अगर आपकी सहेली वगैरह समझ नहीं पाते हैं तो अलग से आप पूछेंगे तो हम आपको बता देंगे, क्योंकि रात्रि भोजन में महापाप है। और रात्रि भोजन करने वाली, यदि आप लोग अक्षय कुमार को जानते हैं कलाकार, जो फिल्मी कलाकार है ना, उसका इंटरव्यू आप देखना यूट्यूब में, उसने बताया 7 बजे के बाद वो रात में खाना नहीं खाता, और डॉक्टर से कहते हैं ब्लड प्रेशर हाई आदि जिनको हो रहे ना, सारी बीमारियों की जड़ है रात में भोजन। वैज्ञानिक डॉक्टर सब इस बात को मानते हैं कि सोने के कम 2 घंटे पहले 3 घंटे पहले भोजन कर लेना चाहिए, जेलों में हो सब जगह दिन में ही भोजन दिया जाता है, और हम लोग क्या कहते हैं जैनी है हम तो रात में चलता है, ये सब उतर्क है। वास्तव में रात्रि भोजन ही आपके लिए बहुत सारे पापों को पैदा करता है, जितने बच्चे यहाँ बैठे हैं मन बना लें हम रात्रि में भोजन नहीं करेंगे जो करते हैं, और फिर आप जितना जल्दी नींद आएगी पढ़ने में मन लगेगा, और रात में जब 12 बजे तक आप चलते रहते हैं, खाते नहीं चलते रहते हैं, तो आपकी नींद भी भाग जाती और आपका मन भी पढ़ाई में नहीं लगता। ये सबसे बड़ा कारण है। जितने बच्चे यहाँ बैठे सुंदर सब बच्चे हैं, जो बच्चे मतलब जिनकी शादी हुई वो तो सुने लोगों का बच्चे, तो रात्रि में भोजन करना छोड़ो। ये तर्क कुतर्क है। भगवान महावीर ने 3 नियम कहे जैनी के लिए, दिन में भोजन करना, रात पानी छान के पीना, और प्रतिदिन देव दर्शन करना। गारंटी है हमारी, जो बच्चे रात्रि में भोजन का त्याग कर देंगे उनको और अच्छी तरीके से जीवन में उन्नति के अवसर प्राप्त होते चले जाएंगे। जो लोग दिगंबर जैन होते हैं परंतु वे श्वेतांबर चंगे समैया चंदन गढ़ी महोत्सव आदि जैन के अन्य शाखाओं में अपनी पसंद से विवाह करते हैं या परिवार की सहमति से करते हैं तो उन्हें पाप लगता है क्या? नहीं। देखो पहली बात तो ये समझना चाहिए दिगंबर और श्वेतांबरों में थोड़ा अंतर है। हमारे भगवान निर्वस्त्र परिग्रही होते हैं और उन्होंने वस्त्र सहित परिग्रह सहित भगवान को मान लिया। जो दिगंबर भगवान को ही मानते हैं और दिगंबर पद्धति के अनुसार पूजन पाठ करते हैं, ऐसे यदि आपस में विवाह आदि माता पिता की अनुमति करते हैं तो इसमें कोई पाप नहीं। किंतु शादी के पहले जो लड़के लड़की स्वयं दोस्त बन के और घूमना फिरना मस्ती करना आप सब लोग जानते हैं वो कार्य करते हैं तो महान पाप है। माता पिता की अनुमति से यदि जो हमारे दिगंबर रामनायक के अनुसार जिन्हें भगवान की पूजन भक्ति करते हैं उसको करने में पाप नहीं है। अभी एक बेटी हमारे पास आई थी और उसने श्वेतांबर परिवार में उसकी शादी हो गई। अब उसको जो भगवान के दर्शन पर आगे जो भगवान होते हैं आँख वगैरह लगी है ये सब उसको भाव ही नहीं लगते, और लेकिन वो लोग उस पर्यूषण को मनाने देते, अपने पर्यूषण को नहीं मनाने देते, और वहाँ पर जो शुद्धि अशुद्धि का कोई ख्याल नहीं रखता। हमारे यहाँ 3 दिन माँ बहने का वसत होते हैं तो भोजन नहीं बनाती, भोजन नहीं करती, तो उस परिवार में उनकी सासू वगैरह को उसका कोई विवेक नहीं। तो कहते हैं 3 दिनों में खूब खाना बनाते हैं, यहाँ तक के साधु जो होते ना श्वेतांबर साधु उनको भी वो आहार वगैरह दे देती है। बोले महाराज हम इतने दुखी हैं, वो करोड़पति घर है किंतु दिगंबर के संस्कार नहीं होने से वो बहुत दुखी है। हमारे जहाँ पर आचरण की समानता हो, जहाँ पर हमारे धन पैसे की समानता हो, ऐसा भी नहीं करना चाहिए कि गरीब घर की लड़की है वो करोड़पति को ब्याह दी, वो करोड़पति जो शादी करेगा नौकरानी बना के रखेगा। इसलिए अगर हम गरीब हैं तो गरीब ऐसा ही परिवार देखे जिसे ऐसा ही परिवार देखे जिससे कि हमारा लेना देना व्यवहार समानता से होता रहे। नमोकार मंत्र जाप की उंगली से करना चाहिए। हम तो ये बड़ी उंगली से प्रारंभ करते हैं और ऐसा ये 3 उंगली में करते हैं ऐसा। ये उंगली में गिनने का साधन मात्र है और कहीं भी चलने कोई विशेष दोष नहीं होता, ये तो गिनती का साधन है। किंतु बीच वाले कोण से शुरू करके ऐसा जो करते हैं, लेकिन इतना ध्यान रखो नमो हरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयुर्याणम, नमो वध्यायणम, नमो लोहित शब्द सावणम। अब हमारा एक पोर से दूसरा पोर पे आना है, नमन जानो जानो मारण जान ऐसे भी कह लोग कर लेते हैं। एक सेकंड नहीं होता उनकी पूरी बार जाप पूरी हो जाती। नहीं, हमने कई बच्चों को देखा उंगली फेरते रहते नहीं, एक पोर पर अच्छी तरीके से पूरा नमस्कार मन पढ़ो फिर दूसरे पोर पर जाना चाहिए। और ये गिनने का साधन है, यदि किसी भी तरह हमने पढ़ने का कोई दोष नहीं लगता। कभी कभी हम लोग कोई गलत काम नहीं करते फिर भी दुनिया वाले हमारी निंदा करते हैं। पहले तो हम हंसी में टाल देते हैं फिर भी हमारी निंदा करते हैं, फिर अन्य लोग भी निंदा करने लगते हैं। ऐसे समय हम कोहरे छोकर को उसका विरोध करते हैं पर फिर भी और निंदा करते हैं तो हम क्या करें? क्या सत्य कहना पाप है? कोई मेरी बात क्यों नहीं मानता? देखो ऐसा होता है जब सीता जी के 3 अशुभ कर्म का उदय आया, सुन रहे आप लोग ना, जब सीता जी का 3 अशुभ कर्म का उदय आया तो रामचंद्र जी को पता था कि मेरी सीता निर्दोष है, जिसके लिए राम ने रावण से युद्ध किया। और उसके बाद जब किसी ने धोबी ने लालसा लगा दिया कि सीता जो रावण के घर रहते हैं वो कैसे शुद्ध हो सकती है, और राम को अपने कुल की मर्यादा के लिए सीता का त्याग करना पड़ा और सीता को कभी घर का सुख नहीं मिला, लेकिन उसने लव कुश का जन्म भी कहाँ पर हुआ? दूसरे घर में हुआ। तो वास्तव में हमारे तीव्र कर्म का उदय आता है तो ऐसे अपवाद आदि होते हैं। इस समय हमें क्या करना चाहिए, जब तीव्र अशुभ कर्म का उदय होगा तो सत्य को बार बार बताने का प्रयास नहीं करो, आप अपने अच्छे काम में लग जाओ। धीरे धीरे निंदा करने वाला स्वयं अपने आप चुप हो जाएगा, कितनी देर तक करेगा, लेकिन जब आपके सामने यदि तीव्र अशुभ कर्म का उदय है तो कई बार ऐसा होता है सीता जी के ऐसे कर्म का उदय आया था और उन्होंने लांछन लगा और यहाँ तक कि राम ने सीता को घर से भी निकाल दिया। यदि कभी ऐसी कोई स्थिति आपने गलती नहीं करी फिर भी सामने वाला आपको गलत कह रहा है उस समय बढ़िया भगवान की भक्ति करो। हे भगवान, हमारे अशुभ कर्म का जो फल उदय में आया है ये कर्म भी हमारे जीवन से टल जाए और हमारा अपना आचरण अच्छा बनाओ। कई बार हम लोग अंदर से तो हमें पता है कि हम गलत हैं, दुनिया को अच्छा दिखाने का प्रयास करते हैं, ऐसी गलती नहीं करना। यदि आप भीतर से गलत हैं तो आपकी अंतरात्मा जानती है, हम और तुम कोई तुम्हारी अंतरात्मा को नहीं पहचानते, किंतु अपनी अंतरात्मा बता रही कि हम गलती कर रहे नहीं, गलती को दुनिया के सामने दिखाना नहीं चाहते। गलती कितनी भी करो लेकिन आज नहीं तो कल वो गलती प्रकट ही होती है। यदि आप गलत नहीं है बिल्कुल विकल्प नहीं करो, अच्छे भगवान की भक्ति करो, आपके सब कर्म का अच्छा होगा और रोज बढ़िया भगवान के सामने मेरी भावना पर हे भगवान कौन सा मैंने अशुभ कर्म किया जिसका फल मुझे मिल रहा है, हे भगवान जल्दी से मेरे कर्मों का क्षय हो और हमारे ये निंदा आदि के काम दूर हो जाए, इसमें टाइम नहीं लगेगा, निश्चित आपके जीवन में बहुत अच्छा प्रसंग आ जाएगा, घबराओ नहीं, सब अच्छा हो जाता है। बहुत बड़ी खुशी है, हमने ऐसे पढ़ लिया, ध्यान नहीं जो ऊपर करना पड़ेगा, कोई बात नहीं। कि सभी बच्चों के लिए हमने बताया, हमने एक बहुत अच्छा हाइकू आचर से लिखे हैं, एक हाइकू लिखा, अपनी गलती अपनी कमी सहज स्वीकारो तो दुख दूर हो, अपनी कमी अथवा गलती सहज स्वीकारो तो दुख दूर हो। जब हम अपनी कमी सुधारने का स्वीकार लेते हैं तो दुख बहुत जल्दी दूर हो जाता है, पर हम अपनी कमी को छुपाने का प्रयास करते हैं, गलती को छुपाते चले जाते हैं, एक गलती के पीछे 100 गलती करते चले जाते हैं तो गलतियां बढ़ती चली जाती हैं। इसलिए किसी के जीवन में कोई गलती हो तो उसको गुरु के सामने बता करके और प्रायश्चित लेकर के आगामी हम वो गलती नहीं करेंगे ऐसा संकल्प लेंगे तो आपका भविष्य बहुत अच्छा हो जाएगा। नियम अगर टूट जाए तो क्या करना चाहिए, आपने भगवान के सामने लिया है तो नमोकारांत मंत्र आदि की माला फेर लें, गुरु के सामने लिया है तो गुरु को बता करके प्रायश्चित ले लें तो आपका नियम में जो भी पाप लगा है वो ठीक हो जाता है और पुनः नियम को पालन करने का मन बनाए। कोई सर है कहते हैं कि जैन बहुत कंजूस होते हैं, मैं कहते हमारा महामंत्र के गायत्री मंत्र से निकला है, ऐसा नहीं है। जैनों ने इतिहास उठा करके देख लो, जैनों ने जितना दान पुण्य किया उतना किसी ने दान पुण्य नहीं किया। जैनों कितने बड़े बड़े मंदिर बने हैं करोड़ों की, इसमें संपत्ति लोगों ने दान की। एक भामा शाह ने इतनी संपत्ति महाराणा प्रताप को दी थी कि 12 वर्ष तक 3000 सैनिक भोजन कर सकते थे। अभी बॉम्बे में एक राजा भाई क्लॉक टावर बना हुआ है हाईकोर्ट के सामने, एक जैन बंधु ने 1857 में उसमें 2,00,000 रुपए की राशि लगा के वो टावर बनाया था। कब? 1857 में 2,00,000 रुपए खर्चा किया था। उसकी माँ अंधी थी और उसको दिखता नहीं था, लेकिन माँ का नियम था मैं रात में भोजन नहीं करूँगी, तो अपनी माँ के नियम पालन करने के लिए उसने उस जमाने में 2,00,000 और आज वो 2,000 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति है। इतिहास उठा करके देखो आप तो जैनों ने जितना देश के लिए समर्पण किया जितना समर्पण किसी की क्षमता तो होती नहीं थी। आज भी आप जिस गांव में चले जाओ कंजूस का जितना ही होता है, हमारे जैन दारू और मांस में पैसा खर्च नहीं करते, लेकिन दूसरे व्यक्ति दारू और मांस में पैसा खर्चा कर देते। एक ठेला चलाने वाला दिन भर मेहनत करेगा, शाम को जाके 50 रुपए का पौआ पी जाता है, घर में क्या बचता है? कुछ नहीं, जो की जो गरीबी। लेकिन जब जैनी 100 रुपए कमा करके लाता है तो 80 रुपए अपने घर में खर्चा करता है, 20 रुपए मंदिर में दान करता है। इसलिए जैन कभी गरीब नहीं होता है, जैन कभी कोई रिक्शा चढ़ाते नहीं मिलेगा, जैन कोई कभी आपको गलत काम करते नहीं मिलेगा, क्योंकि जैनों के भगवान जब यहाँ से गए तो सब छोड़ करके जैनियों को दे करके चले गए, बेटा तुम खुशहाली रहो। आज हमारे समाज में व्यसन की प्रवृत्ति बढ़ रही है या जहाँ पर बढ़ रही है वहाँ पर दान पुण्य का होता है। लेकिन वास्तव में जैन समाज का इतिहास आप उठा के देखो तो विदिशा में देख लो ना, विदिशा में जैन कॉलेज चलता है, सर से पहुंचे उन्होंने कितना बड़ी जमीन और सारे विद्यालय जैनों के थे, सारी बड़ी बड़ी संस्थाएं जैनों के द्वारा संचालित थी। आज भी 80% इनकम टैक्स जो भारत का इनकम टैक्स मिलता है सरकार को, 80% इनकम टैक्स पटाने वाली जैन समाज है। और जितना हिंदुस्तान में व्यापार चलता है, जब 24 अगस्त को जिस दिन संलिखना के प्रसंग को लेकर के हिंदुस्तान में बंद हो गए था, पूरा जैनों में दुकानें बंद की थी, उस दिन शेयर बाजार पूरा लुढ़क करके जमीन में आ गया था। एक दिन अगर जैन समाज अपना व्यापार बंद कर दे पूरे देश की हालत खस्ता हो जाएगी। आज जैनों के हाथ में जो अर्थव्यवस्था है, जैन दान तो करते हैं किंतु पात्र को देख करके दान करते हैं। आज हमारे मंदिरों में जिस तरह दान होता है उस तक पात्र को दान दिया जाता है, अपात्रों को पात्र को दान नहीं दिया जाता। लोग कहते और नमोकार मंत्र से ही सारे मंत्र निकले हैं, नमोकार मंत्र को अनादि आनेदन है, बाकी शेष मंत्र बाद में उत्पन्न हुए हैं। फिर भी जो लोग कहते हैं उनको ज्यादा समझना चाहें तो समझाना, अन्यथा उनसे उलझने से कोई मतलब। कुछ लोग कहते हैं हमारे जो महान महान गुरुवर हुएंगे सब जैन है नहीं, तो उन्हें क्या कर, जैन क्या होता है, पहले जैन धर्म तो था किंतु हमारी समाज जाति हुए क्षत्रिय वैश्य और ब्राह्मण, इन तीन कुलों में बटी हुई, तीन वर्ण व्यवस्था थी। तो जितने तीर्थंकर क्षत्रिय वर्ण के हुए और बहुत से मुनि गौतम गुण में ब्राह्मण वंश के हुए और वैश्य से भी बहुत से मुनि बनते थे, तो पहले वर्ण व्यवस्था थी। लेकिन वो हर वर्ण को मानने वालों में जैन भी होते थे, क्षत्रिय जैन भी होते थे, क्षत्रिय हिंदू भी होते थे। लेकिन जो क्षत्रिय जैन थे उन्होंने मुनि आदि पद धारण किया, इसीलिए लोग कहते हैं कि हमारे सब जहाँ कोई बात नहीं है। उस समय तीन कुल थे, क्षत्रिय कुल, वैश्य कुल और ब्राह्मण कुल। जो देश की रक्षा करते थे वो क्षत्रिय माने जाते थे, जो शिक्षा आदि का काम करते थे वो ब्राह्मण माने जाते थे, और जो साफ सफाई आदि का जिम्मेवारी वो शूद्र माने जाते थे, और वैश्य माने जो व्यापार करते थे वो वैश्य माने जाते थे। सभी धर्म के लोग जैन धर्म कुल के लोग जैन धर्म का पालन करते, इसलिए ऐसा कहने में आता है। हम किस तरह परिधान पहनना चाहिए, खासकर लड़कियों को कैसे वस्त्र पहनना चाहिए, इस विषय में दीदी ने आपको कल बताया होगा, बहुत अच्छी बात, जब हम सागर में थे सभी दीदी ने बताया था और इस विषय में आपको दीदी बता देंगे। ऐसे वस्त्र हमें पहनना चाहिए जिससे हमारी मर्यादा का परिचय प्राप्त हो, जिससे हमारे अंगोपांग का प्रदर्शन ना हो, ऐसा ध्यान रखना चाहिए। मैं स्कूल तथा कॉलेज में टॉपर हूँ तथा नौकरी करने का मन नहीं है, पर मुझे लोग हमेशा कहते तुम टॉपर तो रहते, डिग्री का क्या फायदा, तुम कोई फॉर्म नहीं डालते, नौकरी नहीं करते, जो तुम बनना चाहते हो वो बन सकते हो पर क्यों नौकरी नहीं करते, ऐसा मैं इनको क्या जवाब दूँ। देखो आज दुनिया भीड़ की चाल कर रही है और उनकी नजरों में यही सब कुछ है, डिग्री प्राप्त करने का टॉपर होने का तो यही थोड़ी ना कि किसी की नौकरी करे हम। हम अपना जीवन अच्छा बनाने के लिए कोई अच्छा व्यापार भी कर सकते हैं। आज बेटियों के लिए भी जो सुबह बताया प्रधानमंत्री कौशल योजना में हम अपना स्वयं का कोई अच्छा, अभी जैसे वो वहाँ पर वो दीदी हैं जो विजय ब्रह्मचारी हैं, उनकी भाभी जो है वो अपना एक ऐसा व्यापार करती है, चेतना भाभी जो है वो बढ़िया फूल वगैरह बनाती है, दसों बच्चियों को रोजगार दे रही है, और जब वो एग्जीबिशन वगैरह में जाते हैं वो दोनों पति पत्नी और वहाँ पर हजारों रुपया कमा भी रहे और 10-25 बच्चियों को रोजगार दे रहे हैं। आप लोग ऐसा काम करो कि हम 2500 को रोज, यदि आप टॉपर हैं आपका दिमाग बहुत अच्छा है तो ऐसा काम आप करें कि अपने शिक्षण का विद्यालय खोलें, यदि आपके पास अपने विद्यालय में संस्कार दें बहुत अच्छे का, नौकरी करना ही थोड़ी ना है, ये तो अज्ञानियों की सलाह है जिनको वास्तव में अपनी जिंदगी आपकी जिंदगी से भी मतलब नहीं है। उनको तो सबके बीच में बताना है कि हमारी बेटियां है ना वो देखो बढ़िया नौकरी कर रही है, अमेरिका में रह रही है, लेकिन उनको बच्चों के सुख से मतलब नहीं है, उनको जो अपना गरिमा कहना चाहिए, गरिमा ऊंचा हो जाए सबके सामने हम कि हमारी शान से हमारी बच्ची तो अमेरिका में इंजीनियर है और वो तो 15 लाख रुपया साल में कमाती है। उनको ये नहीं पता वो 15 लाख अमेरिका में कमाने वाला हमारे यहाँ 1.5 लाख कमाने वाले के बराबर है, वहाँ ऐसे खर्चे भी होते हैं। इसीलिए वास्तव में उनकी बातों में आप मत आओ, यदि हमारी बातों में आओ, क्योंकि ऐसे लोग कहने वाले तो कहते रहते हैं, इनकी बातों को स्थान से सुनना और स्थान से निकाल देना। हाँ, यदि जो बच्चे बोलते हैं कि तैयार बोलते हैं यार हमें गाली देखो हमें क्या, हाँ गाली कभी भी नहीं देना चाहिए। बहुत से बच्चे यहाँ गालियाँ देते हैं, अभी हम पीछे कमरे में बैठे, इतनी गंदी गंदी गाली, छोटे छोटे बच्चे और जैनता जो भी होंगे पीछे से निकलते हैं। गाली कभी नहीं, गाली देने से आपका मुख इतना बुरा हो जाएगा कि ना आप कभी बोल पाएंगे और सैकड़ों रोग हो जाएंगे। गाली देने का बहुत बड़ा पाप है, इसलिए कभी भी गाली नहीं देना चाहिए। उसका अर्थ अगर आप लगाएंगे तो आप समझ जाएंगे कितना गलत काम हम कर रहे हैं। किसी के कहने से कभी भी गाली नहीं सीखना। वॉलेंटियर हमें दे तो हम क्या करें, वॉलेंटियर की एक गलती है, बच्चों को गाली नहीं देना चाहिए, प्रेम से समझाना चाहिए। यदि कोई वॉलेंटियर ऐसा करता है उसकी गलती है, हम उनको समझा देंगे। हमें मंदिर जाने में कितना पुण्य मिलता है, भगवान के दर्शन में बहुत सारा पुण्य मिलता है। आप जाके तो देखो, अभी से तुम बनिया के समान भाव तोल कर रहे हैं, है? पहले आप जाके देखो, खूब पुण्य मिलता है, उसको हम बच्चों से नहीं कह सकते। राम जी मोक्ष गए, हम राम जी को क्यों नहीं मानते? कौन ने कहा हम राम जी को नहीं मानते? हम राम भगवान को मानते जिन्होंने मोक्ष प्राप्त किया। जब वस्त्र पहने ना, वस्त्रधारी राम को हमने, हम तो मोक्षगामी भगवान राम को हम भी मानते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ आप देखो, आप हमें हमारी पूजन करते, आपके पापा की पूजन करते क्या हम लोग? अष्टदर से पापा जी भगवान मुझक चंदन चंदू लड़के पिताजी वर्गम निर्माण थे, और हमने क्यों करते? हमने उन्हीं महाराज कर लिया, सब हम आएंगे तो महाराज जी मुझक चंदन बोल के अर्घ चढ़ाते, क्योंकि हमारे वस्त्रधारी की पूजा नहीं होती। जो दिगंबर व्रत धारण करते हैं जब रामचंद्र जी मुनि बने और मूर्ख गए, तब हम उनको पूछते। आज ही हमारे यहाँ मांगी सुनगी आप लोग गए क्या एक बार पूछी, वहाँ आज ही भगवान राम की प्रतिमा बनी है, उनकी रोज अष्टद्रव्य से पूजन होती है, अभिषेक होता है। मुनिराज घंटी क्यों नहीं बजाते? तुम बजाओ घंटी, हमें क्या आवश्यकता है, हम तुम्हारी घंटी बजाते हैं, इसलिए मंदिर की घंटी नहीं बजाते। घंटा जाने में वो आसपास जीव भी हो सकते हैं और उसमें मर भी सकते हैं। मुनि महाराज किसी द्रव्य के अवलंबन के बिना ही पूजन पाठ करते हैं। आपको घंटी बजाने में ठीक है, क्योंकि वैसे आप रास्ते में चलते हैं बाजे बजाते हैं, महाराज तो बाजे भी नहीं बजाते, और हम आप लोगों की घंटी बजाते हैं, इसमें आपको सही आप जाग जाओ। दोपहर में सोने से पाप इसलिए लगता है कि दिन का समय सोने के लिए तो नियत नहीं है, जिस समय जो काम करेंगे उस समय उचित है। अभी वैज्ञानिकों के अनुसार भी दिन में सोने से आयु कर्म की बहुत उदीर्णता होती है। जो व्यक्ति रात में समय पर सोता है माने 50 साल जिएगा, और जो दिन में सोता है उसकी आयु घट के 20 साल बचेगी, 30 साल उसकी आयु कम हो जाएगी, ऐसा आयुर्वेद शास्त्रों के अनुसार लिखा है। हमें देश काल दर्शन करने से क्या पुण्य का लाभ होगा, विस्तार से बताइए। विस्तार विस्तार से कुछ नहीं, अभी बिस्तर लगा कर शाम को सोइए। धर्म का मथा हुआ सार क्या है? धर्म का मथा हुआ सार ये करो, धर्म का सारभूत तत्व क्या है? हम ऐसा कोई काम ना करें जिससे हमें दुख होता है, वैसा काम दूसरों के लिए ना करें। यदि कोई हमें चोटी लेता है तो हमें बुरा लगता है, चोटी लेते ना तो हम भी दूसरों के लिए चोटी ना लें। यदि कोई हमें गाली लगता है तो अच्छा लगेगा बुरा, तो हम भी दूसरों के लिए वैसा व्यवहार ना करें। जो व्यवहार हमें बुरा लगता है वो व्यवहार हम कभी भी दूसरों के साथ ना करें, यही धर्म का सार है। इतनी और बड़ी पढ़ने में टाइम लगेगा। हाँ अच्छा, ये संस्मरण है ना किसी ने, तो ये आप स्वयं आके बोल देना, अभी 2 मिनट उसके बाद माइक दे देंगे, इनके प्रश्न नहीं है, आपको क्या लिखना है वो। हाँ ठीक है, ये जिन बच्चों के है ना जो क्या कहते हैं अनुभूति, वो अभी आप माइक में बोले भैया, एक माइक बच्चों को दे देना, तो अभी वो बोलेंगे। अभी सोम बस आज सुने रात में खाना तो बहुत अच्छा है, और टूट जाए तो रात में कभी नियम ले सकते हैं। हाँ बहुत अच्छा, आज से रात्रि भोजन त्याग करने का जो बच्चे नियम ले रहे हैं बहुत अच्छा, बढ़िया आप त्याग करो। और कभी भी भूख नहीं लगे, लग भी जाए ना थोड़ा मूँगफली, नहीं थोड़ा सा मूँगफली फल वगैरह ले लो, अन्य का तो कम से कम पूरी तरह त्याग कर दो, बहुत अच्छा रहेगा। चलिए नमोकार को अनादि आदि आदि मंत्र को सबकी परिभाषा के लिए, आप नमोकार मंत्र के विभिन्न नाम क्यों लिखे हैं इसकी परिभाषा के लिए हमारे पास पुस्तक या जिन सरस्वती आपको जो छोटी पुस्तक मिली ना, इसमें इसकी परिभाषा भी वहाँ से पढ़ लेना। नमोकार मंत्र सातों सात में करना जरूरी होता है क्या? हाँ, सातों सात में आप करेंगे तो विशेष एनर्जी आपको मिलेगी, अनेक प्रकार के रोग आदि नष्ट हो जाते हैं। और नहीं भी करते नमोकार मंत्र हर परिस्थिति में फायदेमंद है, क्योंकि सातों सातों पर के साथ करेंगे तो विशेष लाभ आपको जीवन में होता है। दुख का कारण क्या है, दुख कैसा बढ़ता है, दुख को कैसे रोका जाए, दुख से मुक्त अवस्था क्या है, है? ये सीधी सीधी बात है। आकुलता का नाम है दुख, आकुलता का नाम दुख है और निराकुलता का नाम सुख है। आज हम दुख को समझ तो रहे हैं, फिर भी दुख को छोड़ कारणों से नहीं बच रहे। एक उदाहरण आपको सुना देते हैं। एक बार क्या हुआ, दो गधे थे, सुन रहे थे, जो सुन रहे हैं वो समझदार है, जो नहीं सुन रहे ध्यान से नहीं सुन रहे। दो गधे थे, एक धोबी का गधा था और एक कुमार का गधा था। एक दिन दोनों गधे नदी के किनारे मिल गए। बोले क्यों भाई, कैसी जिंदगी चल रही है? तो कुमार के गधे ने कहा, यार भाई मैं तो खूब मजे में हूँ, वो तो 7-8 दिन में मालिक एक दिन मुझे मिट्टी लेने के लिए यहाँ पर आता है और मिट्टी खोद करके अपने घर ले आता है, 7-8 दिन कमा घड़े बनाता है, फिर एक दिन मुझे बाजार में जाना पड़ता है, मैं तो 15 दिन में 2 दिन की ड्यूटी रहती है और बढ़िया बाकी 13 दिन तो मौज मस्ती आराम से घास खाता हूँ, मज रहता हूँ। धोबी के गधे से पूछा, बोले तुम्हारी क्या दशा है मित्र? बोले भैया मेरी तो बड़ी विचित्र दशा है, ऐसी मेरी दशा है कि रोज मुझे कपड़े लेकर के नदी तक आना पड़ता है और कपड़े धोने के बाद और कपड़े भारी हो जाते हैं और मुझे लाद करके पुनः घर तक ले जाना पड़ता है, मेरी तो कमर टूटी जा रही है। जो कुमार के गधे ने कहा, अरे भाई तो उसके कष्ट में एक काम कर, तो उसका घर छोड़ करके मेरे पास आ जा, अपन दोनों बढ़िया मस्ती से रहेंगे। तो धोबी का गधा कहता, यार बात तो तेरी सही है लेकिन मैं अपने धोबी का घर नहीं छोड़ सकता। बोले क्यों, क्या बात है, ऐसा क्या तुझे मार पानी खाने को मिलता? बोले खाने को तो कुछ नहीं मिलता, मेरा मालिक जो है ना उसकी एक छोटी सी बेटी है, वो 7-8 साल की बेटी है और जब वो खूब ऊधम करते तो उसकी मम्मी उसकी खूब पिटाई लगाती है और पिटाई लगाते लगाते कहती मैं तेरी शादी गधे से कर दूंगी। तो बोले मुझे इतनी खुशी होती है कि मैं सारे कष्ट कह सकता लेकिन धोबी के घर को। ऐसे आप लोगों की दशा है कि मां थोड़े से सुख मिलेगा इसके बदल में इतने कष्ट आप लोग सहन कर रहे हैं, उसने थोड़े से मुस्कान हाथ दे दिया, थोड़ा सा प्रसन्नता से बोल दिया और हम सब कुछ कष्ट सहने को तैयार हो जाते हैं। मनुओं ये मुंह की महिमा है, इससे हमें बचना हो तो जिनवाणी का अध्ययन आप करेंगे तो गधे से कम इंसान को। हाँ, यदि कोई अन्य समाज का व्यक्ति जैन धर्म में आस्था रखता है तो अभिषेक आहार आदि दे सकता है। देखो हमारी इसमें मर्यादा होती है, वो व्यक्ति किस तरह से जैन धर्म को स्वीकार कर रहा है इसको पहले हम देखेंगे और वो व्यक्तिगत रूप से अगर वो व्यक्ति हमसे मिलते हैं तो ये कोई सामाजिक व्यवस्था को ओपन रूप से कभी भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि इसको अलग से चर्चा का आपको समझा सकते हैं। चंद्रमा का परिवार होता है, हाँ कितना होता है आप पढ़ेंगे तो चंद्रमा के परिवार में 2 सूर्य है, 27-28 नक्षत्र हैं, 88 तारे हैं, करोड़ों तारे हैं, ऐसा ये सब वर्णन जो सरस्वती पुस्तक में आपको मिल जाएगा। नमोकार मंत्र का जाप समय दिए तो बता लिया, एक समय भोजन लेते हैं, एक ही समय में भोजन क्यों लेते, दोनों समय क्यों नहीं लेते, ये एक तपस्या है। एक समय भोजन लेने में हमारा काम कर सकता है, कई बार तो उपवास भी कर लेते हैं, तो जितनी बार भोजन करेंगे उतना ज्यादा पाप का बल होगा, पराधीनता होगी, इसलिए मुनिराज एक ही बार भोजन लेते हैं। कुलों के घर में बांध कुत्तों को बांध घर में बांध कर रखना, ये और इतनी सारी चिट्ठी लगी नीचे उसको देखेंगे हमने, गाय को रखने उसको बांध कर रखने पाप। देखो कुत्ता मांसाहारी प्राणी है, गाय शाकाहारी प्राणी है और गाय का पालन करने से प्रेम वासन बढ़ता, कुत्तों को पालन करने से घर में लड़ाई झगड़े बढ़ते हैं। यदि आपको कोई कुत्ता कहे तो कैसा लगेगा और गैया कहे तो हमारी बीवी तो गैया जैसी है तो अच्छा लगेगा बुरा लगेगा, पर हमारी बीवी तो ले भैया जल्दी से थोड़े प्रश्न ला जल्दी से चिट्ठी है ना, कुत्ता सस्ती आपने आम में कोई कहे हमारी दीदी ऐसी तो बुरा लगेगा ना, गैया कहेगा गैया माने बहुत सीधी सानी माने जाते हैं, इसलिए तो ये बच्चे जल्दी से आके बोलो किसका है, कौन है जल्दी खड़ो भैया माइक दो उनको, हरि ओम इधर ले आ जाओ। वो एक माइक दे दो फोन में बोले कि ये पर्चा जिसको बोलना जल्दी आगे खड़े हो, दो मिनट में बोलो। हमें गणित समझ नहीं है तो क्या करें, गणित के मास्टर के पास जाके पढ़ो लिखो और समझ नहीं आया तो हमारे पास आ जाकर बता के दो दूनी चार। हिंदी पढ़ना शुरू कर दो, अंग्रेजी स्कूल से निकल जाओ। जो बच्चे अंग्रेजी मीडियम में पढ़े उनकी बड़ी समस्या है कि बेचारे दो ही दिन से कहे पाड़े और हरुआ मिलेगा, इसलिए बढ़िया हिंदी माध्यम के स्कूल में पढ़ो और हम दो दूनी चार दो तीन छह दो सबको आठ बढ़िया याद करो, देखो कैसे गणित नहीं बनेगा। टू हंड्रेड टू 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 या फोर टू टू या सिक्स का पूजा पूजा में सूर्य लग रहा है और क्या। यदि हम कोई लक्ष्य बनाते हैं और यदि हमारा मन डगमग जाता है, एकाग्र नहीं हो पाता, क्या करें? इसमें आपको बहुत सारी बातें बता दी। लक्ष्य बनाने के बाद यदि हमारा मन डगमग होता है तो इसका सबसे अच्छा उपाय अभी हमने सुबह भी आपको बताया था। और क्या होता है कई बार बीच में ऐसी परिस्थिति ऐसी समय में हमारे लिए गुरु और हमारे मित्र काम आते हैं। मित्र उसे ही कहते हैं जो हमें पाप और बुराई से बचाए। आप ऐसे मित्रों की संगति करते हैं वो आपको लक्ष्य से डगमगाने में ज्यादा सहयोग करते हैं। यदि कोई आपका लक्ष्य डगमग हो रहा हो हमारे पास आके बैठे, हम आपको जरूर इसका समाधान कर सकेंगे। ये जो ग्रंथ आदि आचार लिखते हैं ऐसे जैसे तीर्थंकर भगवान अपना उपदेश देते थे उनको मुनियों ने सुना, वो याद करते थे, याद रहता था और वो ही महाराज जी याद का ग्रंथ के रूप में लिखते चले जाते थे। जो झूठ बोलता है उसमें क्या होता है, झूठ बोलने वाले को मुख के अनेक रोग होते हैं और परिवार जन भी उसका विश्वास नहीं करते। और अगर हम झूठ बोलते हैं तो हमें ये झूठ संकल्प लेना चाहिए कि हम माता पिता से कम झूठ नहीं बोलेंगे। जितने भैया बहन यहाँ बैठे हमारी बात सुन रहे, आज सब एक नियम ले लो कि जिंदगी में हम कभी भी मम्मी से तो झूठ नहीं बोलेंगे। क्या है बोलो, कम से कम माँ से झूठ नहीं बोला। जिस दिन बेटा बेटी माँ से झूठ बोलते हैं उसी दिन से उनके पतन का रास्ता प्रारंभ हो जाता है। तो माँ से मत छुपाओ और जहाँ तक माता पिता से झूठ नहीं बोलेंगे ऐसा मन बना लो और बाकी सब काम चल जाएगा। वैसे झूठ बोलना ही नहीं चाहिए, फिर भी कम से कम माता पिता से झूठ नहीं बोलना चाहिए। और माता पिता इतने समझदारी रखें यदि बच्चे हमारे अपने मन की कोई बात बताते हैं तो उनको अन्यथा ना दे करके सही रास्ता दिखाने का प्रयास करें। इसलिए दीदी ने आज तक बच्चों के माता पिता को बुलाया था जिसमें वो बच्चों की भावना को भी समझ सके और झूठ बोलने के लिए उनको प्रेरित ना करें। कई बार बच्चे झूठ बोलना नहीं चाहते किंतु मम्मी पापा ऐसी परिस्थिति खड़ी कर देते कि झूठ बोलना ही पड़ता है। इसी सामंजस्य को बैठाने के लिए आज यहाँ पर माता पिता के साथ आपको बुलाया था। कुछ माता पिता ही आए, बाकी ज्यादातर नहीं आ पाए, अब क्या कर सकते हैं। फिर भी जो आ गए तो बहुत अच्छे। ये बोलो भैया किसको बोला जल्दी से, जो बच्चे खड़े हो ना जल्दी से, किसकी चिट्ठियाँ हैं, हम पढ़ेंगे तो बहुत टाइम लिया दीदी। अभी आप बुलवा लेना जैसा हो, क्योंकि तो बच्चे खड़े ही नहीं हो रहे। कौन कौन दीदी, ये मंगल अंगल जो होता है ना इसका अपने को ज्यादा पता नहीं है। शादी आ गए हम लोग, सुधा सागर महाराज जी ने शादी की विधि बताई है, यूट्यूब पर डली है। शादी का बढ़िया करो ना, मना किसने किया। महाराज जी ने बताया जिस दिन दुरा देने बढ़िया उपवास करें, धोबी दुपट्टा और मंदिर की साड़ी पहन करके भगवान के सामने परिक्रमा लगाए। महाराज जी ने बताया तो करने में कोई बाधा नहीं। कोई अपने को मोटा कहता है, अपने को मोटे से बढ़ने क्या करें, कुछ नहीं। मोटे हो तो काय को विकल्प ना, मोटे हैं तो विकल्प रहो। अरे यदि अपन मोटे हैं कोई भी मोटा कहे इसमें काय का चढ़ना है, जो है तो है। अब हमारे पास सफेद है, कोई कहते सफेद बाल, उसमें काय का चढ़ना, अपनी ये भी अपनी फैशन है। जब लोग फटा पैंट पहनने वालों को कोई फटा उनको बुरा नहीं रहा, तुम्हें कोई मोटा कहते काय का विकल्प करना। अपना पुण्य है, अपन मोटे है, जिसका पुण्य नहीं वो सूख रहा है, खाए पिए करके कहा को टेंशन कर रहा है। हाँ सुनो, इसमें लिखा है कि हमारे दोस्त जैन हमारा साथ नहीं देती, लेकिन अन्य समाज की लड़की को दोस्ती करना पड़ता है। अन्य समाज की लड़कियां दोस्ती करना ठीक है क्या नहीं? देखो ऐसा है, साधारणी अगर आपके कोई सहेली या दोस्त बनते हैं तो आपके धार्मिक कार्यों में आपका सहयोग दे सकते हैं। और यदि जैनेश्वर कोई बनते हैं तो आपकी भी धार्मिक आस्था डगमगाती है। और कई लड़कियां आज जो हजैन बन रही है, नौ दुर्गा के व्रत रख रही, अनेक प्रकार के अन्य धर्मावलंबी के व्रत रख रही, इसका कारण यही है उनकी संगति ऐसे धर्मावलंबी से जो कि जैन धर्म को नहीं पालते। इसलिए बंकी कोशिश जैन धर्मावलंबियों को अपना मित्र बनाए, अन्यथा ऐसे संस्कारवान बच्चों को अपना मित्र बनाए जिससे कि अपना धर्म बाधित न हो। भैया इतने ही रखते हैं, हमारा भी टाइम हो रहा है, आरती करना जल्दी से 5 मिनट आरती करो। ये आपने बहुत सारी बात लिखी है, बहुत अच्छा, बच्चों के संस्मरण अलग से लिख लेना और अभी सुना। विद्या सागर की गुण आगर की सो मंगल बनाए की आज भैया विद्या सागर की गुण आगर की मंगल जला आज उतार आरतिया मैं